आज के इस राम कथा के उत्सव में आप सबका स्वागत है। आज कल और परसों हम ऋषि रामचंद्र के कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले साल जो हम चर्चा कर रहे थे उसे को मैं आगे चालू रखूंगा। तो पिछले साल जब हम अरण्य कांड में खर और दूषण का जो वध हुआ था और उसके बाद में रावण को जो जानकारी मिली थी ये कैसे उनकी सारी सेना उध्वस्त हो गई है उसके बारे में हम चर्चा वहां तक चर्चा की थी। तो उससे आगे हम चर्चा करेंगे आज। तो भगवान की जो कथा है उसमें यह शक्ति है कि जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो श्रीमद् भागवतम में जो दशम स्कंद में गोपियां अपनी प्रार्थना भगवान को अर्पण करती हैं तो वो कहती है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। कहते हैं कि हे प्रभु, तो ये गोपियां भगवान के विरह में उनको याचना कर रही हैं कि प्रभु आप हमारे सामने आप पुनः व्यक्त हो जाओ, प्रकट हो जाओ। और वो उस समय कह रहे हैं कि जब आपका विरह है तभी आपकी कथा का श्रवण करके हम आपका उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि भौतिक जग संसार में हमारा जीवन तप्त होता है अलग अलग इच्छाओं से, अलग अलग चिंताओं से। और जब कोई जो हृदय की अग्नि है वो तप्त अग्नि को अगर बुझाना है तो कोई साधारण पानी काम नहीं कर सकता है और नहीं कोई अमृत काम कर सकता है। साधारणता अमृत, श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में श्रीमद् पार्श्वभूमि जो है भागवत महात्म्य बताई गई है कि जब देवी देवताएं सुनते हैं कि अभी सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा करने वाले हैं, भगवान के लीलाओं का गुणगान करने वाले हैं, तो तभी देवता परीक्षित महाराज के पास आते हैं। वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज, आपको इस तक्षक की मृत्यु से डर है तो हम आपको स्वर्ग का अमृत दे देंगे, उससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। और सुखदेव गोस्वामी को हम स्वर्ग में ले जाना चाहते हैं और वो स्वर्ग में भगवत कथा करेंगे। तो तभी परीक्षित महाराज कहते हैं कहा सुधा कहा कथा। वो कहते हैं सुधा मतलब स्वर्ग का जो अमृत है और भगवान की कथा, इनमें क्या तुलना है। बोलते हैं ये सुधा जो है, जो स्वर्ग का सोमरस जैसे अमृत है, वह थोड़ा सा इस मृत्यु जगत में थोड़ा सा आयु और लंबा कर सकता है, पर भगवत कथा जो है वह शाश्वत काल तक हमें शांति और सुख दे सकता है, क्योंकि वह भगवत प्रेम को जागृत करके हमें भगवत धाम ले जाता है। तो इसीलिए जो हम रामनवमी का महोत्सव मनाते हैं तो उसके कुछ दिन पहले या कोई भी और भी उत्सव, बड़ा उत्सव होगा, कृष्ण कथा है, जन्माष्टमी है या गौर पूर्णिमा है, तो उसके कुछ दिन पहले से हम भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं तो उससे हमारे भगवान की स्मृति बढ़ती है। और फिर जिस दिन रामनवमी है उस दिन हम भगवान का स्वागत हमारे हृदय में कर सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक घटना है कि अयोध्या है यहाँ पे भगवान ने अवतार लिया था, पर हमारा हृदय भी अयोध्या के समान है और हम भगवान को बुलाना चाहते हैं यहाँ पर। तो भगवान जब लीला करते हैं वो लीला करने के अनेक कारण हैं। वो अपने भक्तों के साथ रस लेना चाहते हैं, तो वो रस तो वो आध्यात्मिक जगत में भी ले सकते हैं, पर भौतिक जगत में इसलिए आते हैं वो ताकि जो बद्ध जीव है हम सब वह भगवान के लीलाओं का स्मरण कर सके, दर्शन कर सके, जो उस समय उपस्थित है वो दर्शन कर सकते हैं, बाकी सब श्रवण और स्मरण कर सकते हैं और उससे हम सब भी शुद्ध हो सकते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र की लीलाओं की विशेषता यह है कि उसमें हम भगवान कैसे एक आदर्श मानव के रूप में अवतार लेके सब इस तरह से भूमिका करते हैं जिससे कि हम सब हमारे लिए एक आदर्श उपस्थित हो सकता है। तो जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र खर दूषण का को वध करते हैं क्योंकि वे उन पे आक्रमण करने आते हैं, तो तभी एक ही सैनिक जो होता है, सेनापति होता है, वो बचता है। उसका नाम है अकंपन। और वो अकंपन जो देखता है प्रभु श्री रामचंद्र के तीर कैसे जा रहे हैं, तो वो वहां से जो दंडकारण्य के जहां पे जाके जगह होती है वहां से दौड़ते दौड़ते निकलता है, पूरे भारत महासागर से निकलते निकलते लंका में पहुंच जाता है, और दौड़ते दौड़ते रावण की सभा में जाके गिरता है। और वह रावण देखता है कि अकंपन उसका काफी बड़ा सेनापति है, पर वो जो अकंपन है अभी पूरा कंपन कर रहा है उसका नाम अकंपन है, पर इतना भयभीत हो गया है कि वह कंपन कर रहा है। और जब इस तरह से वह सारी बताता है कथा, उसको पहले डर होता है कि शायद प्रभु रावण जो है बड़े निष्ठुर होता है, तो कभी कभी बड़े क्रूर राजा या कुछ शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनको कोई बुरा समाचार देता है तो उसको ही गोली से मार डालते पहले कि बुरा समाचार लेके आते हो तुम ही अपशकुन हो, उनको मार डालो। तो उसको अकंपन को पहले भय लगता है कि अगर मैं ऐसा समाचार दूंगा शायद मुझे ही क्रोध का उसका पात्र बन जाऊंगा मैं और मुझे मेरा ही वध हो जाएगा, तो इसलिए बड़े भय से वो बताता है पूरा क्या हो गया। बताता है कि आपकी सारी सेना जो आपने रखी थी दंडकारण्य में वो ध्वस्त हो गई है, एक भी नहीं बचा है। तो रावण अपने सिंहासन पे बैठा होता है, क्रोध के आवेश में आके उठ जाता है और गुर्राता है कि किसकी ऐसी शक्ति है और किसकी ऐसी जरूरत है कि मेरे सेना पे आक्रमण करके उनका वध कर सकता है। वो क्या सारे स्वर्ग के देवता आ गए थे, किसकी इतनी शक्ति है, और स्वर्ग के देवता भी मुझसे डरते हैं, उनकी जरूरत कैसे हो सकती है। तो कहता है कि स्वर्ग कोई देवता नहीं थे, केवल एक मानव था। एक मानव कैसे संभव है? तो बोलते हैं कि ये मानव कोई साधारण मानव नहीं है। और फिर वो राम के शक्ति के बारे में बताता है, तो रावण तुरंत कहता है कि मैं इसी वक्त जाके उसका वध करके बदला ले लूंगा। तो अकंपन कहता है कि यह उचित नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति ऐसी है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते। अभी साधारणतः जो रावण को अगर कोई कहेगा कि आप उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकते तो उसको बहुत क्रोध हो जाएगा, और यह कहते हुए कंपन और कंपन कर रहा होता है। पर जब रावण सुनता है तो रावण जानता है पहले से कि मुझे जो वर मिला है जिसके आधार पर मैं सब जगह आतंक कर रहा हूँ, वह वर मानवों से मुझे सुरक्षा नहीं देता है, और जानता है कि अकंपन भी एक शक्तिशाली योद्धा है। तो ये तीनों कारण आते हैं, एक तो जानता है कि मानव से उसको संरक्षण नहीं है, दूसरा अकंपन जो है एक शक्तिशाली योद्धा है, और वह रणनीति के बारे जानता है, शत्रु के शक्ति का जांच लगा सकता है, और इसलिए वह अगर ऐसा कह रहा है कि बड़ा शक्तिशाली है तो थोड़े चौकन्ना होना चाहिए। और फिर जो कार्य किया गया है कि अकेला ही खर दूषण और उसके हजारों राक्षसों का वध करना एक व्यक्ति बिना किसी सेना के, यह चमत्कारिक है, तो इसीलिए इससे थोड़ा सहम जाता है वह। और फिर सोचता है ठीक है, अगर हम सीधा युद्ध करके वध नहीं कर सकते तो कुछ षड्यंत्र बनाना चाहिए। तो इसीलिए वह सोचता है कि उसका एक राक्षस सहभागी होता है मरीच, और वह सोचता है कि मैं मरीच के पास जाऊंगा। और मरीच के पास जाता है तो अभी मरीच की कहानी पहले है कि जब पहले प्रभु श्री रामचंद्र दो बार वनवास में गए, ऐसे विशेष है कि रामायण और महाभारत में कई समानताएं हैं, तो उनमें से एक समानता यह है कि दोनों पांडव और प्रभु श्री राम ये दोनों दो बार वनवास में गए, और दोनों जब पहले बार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब वनवास में गए तभी उनका विवाह होना था, और वो विश्वामित्र मुनि के निवेदन के अनुसार गए थे, तभी वे उन्होंने कुछ राक्षस वध किया। और वैसे उसी तरह से पहले जब पांडव वनवास में गए थे तो उनको जब वारणावत में जो लाख का घर था वो जल गया था, तभी वो पांडवों तो कौरवों से के अत्याचार से बचने के लिए वो जंगल में रह रहे थे, और तभी भी उनका विवाह नहीं हुआ था, तभी उनके साथ द्रौपदी नहीं थी, और दोनों उसके बाद में दोनों जब वनवास में थे तो वनवास के अंत कब हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जब वो उनको विश्वामित्र मिथिला लेके गए, और मिथिला पुर जन मोहक राम विदेह मानस रंजक राम त्रंबक कार्मुक भंजक राम सीतार्पित वर मालिक राम कृत वैवाहिक कौतुक राम। तो नाम रामायण में बताया गया है ये कैसे है, प्रभु रामचंद्र मिथिला में गए, सारे मिथिला के लोगों को आकर्षित कर लिया, और फिर उसके बाद में उन्होंने त्रंबक कार्मुक भंजक राम, जो त्रंबक था शिव जी का धनुष था, वो परीक्षा थी, वो उत्तीर्ण की और धनुष को उठाने के उठाए ने तोड़ दिया उसको, और फिर उसके बाद में सीता से विवाह किया। उसी तरह से पांडव भी वनवास से निकले और वे कहाँ गए, द्रौपदी गए स्वयंवर में गए, वहां पे अर्जुन ने द्रौपदी का हाथ प्राप्त किया, और उसके बाद में दोनों का एक तरह से राज्याभिषेक हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने ही वाला था, हुआ नहीं था, पर वे राज्य में रह रहे थे, उनके बाद में कुछ षड्यंत्र हो गया, दोनों वनवास में चले गए। तो इस भौतिक जगत में कैसे है, वो राजेश्वर में रह रहे थे, जंगल में गए, वापस पुनः राजेश्वर प्राप्त किया, पुनः जंगल में जाके रहे और वापस बाद में राजेश्वर प्राप्त कर लिया। तो जब भगवान भी जब यहाँ पे आते हैं तो इस भौतिक जगत के द्वंद्व रहते हैं, उनके लिए भी वो परे रहते हैं पर बाह्य रूप से उनके जीवन में द्वंद्व रहते हैं। तो जब पहले बार राम और लक्ष्मण गए थे जंगल में, तभी विश्वामित्र का जो यज्ञ चल रहा था वहां पे कुछ असुर लोग आकर सब कुछ यज्ञ को उध्वस्त कर रहे थे, तो उससे संरक्षण के लिए विश्वामित्र मुनि ने बुलाया था उनको। तभी ताटक सुबाहु और मारीच ये तीन प्रमुख राक्षस थे, तो ताटक और सुबाहु जो थे उनका श्री रामचंद्र ने वध किया था, और मारीच जो था जब उसने देखा कि ये कितने कितना शक्तिशाली है ये राम, तो वह डर गया और आक्रमण नहीं कर रहा था। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने देखा कि ये भयभीत हो गया, अभी आक्रमण करने के लिए आया है पर पीछे भी मुड़ा नहीं है, अगर पीछे मुड़ के चला जाएगा तो आक्रमण नहीं करना होता है, ऐसे क्षत्रिय का नीति होती है, पर वो आ रहा है पर इतने शक्ति से नहीं आ रहा है, सोच रहा है कि आक्रमण करना है कि नहीं। तो उसको रोकने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने पूरे शक्ति से तीर मारा, पर ऐसा तीर मारा जो धार धार जिसमें जो तीक्ष्ण नहीं था, और उसके कारण उस तीर के प्रहार से क्या हुआ, वो मरीज जो था दूर फेंका गया एकदम, और फिर वो पहले तो क्रोधित हो गया था, भयभीत भी था क्रोधित भी था, पर दूसरा उसके बाद एक और बार वो आक्रमण करने के लिए आ गया, और इस बार उसने एक शबर बड़ा बहुत ही खूंखार जानवर होता है ऐसे बताया जाता है, शबर जो होता है वो बड़े बड़े जानवरों को खा लेगा, इतना विशाल जानवर होता है वो, शबर के रूप में आया है वो, और उस समय भी प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा तीर मारा उसको कि बहुत एकदम दूर फेंका गया, और जब दूसरी बार इस तरह से फेंका गया तो उसने सोचा कि ये दो बार बच गया, अभी तीसरी बार बचूंगा नहीं मैं, और कहां राम आएंगे और कैसे आक्रमण करेंगे, ये जो राक्षस का पेशा है वो नहीं करूंगा मैं अभी इसीलिए उसने प्रायश्चित के रूप में वो एक तपस्वी जैसे बन गया, और तपस्वी बन के वो तपस्या कर रहा था, पर तपस्या ऐसे कर रहा था पर उसको हमेशा भय था कि कहां से राम आ जाएंगे और कहां से उनका तीर आ जाएगा, तो वह इतना भयभीत था कि अगर कोई उसे बोलता था और कोई शब्द वाक्य में र या अक्षर में जाता था, अभी राम में र या अक्षर है, वो अक्षर से भी भयभीत हो जाता था। तो यह भी एक प्रकार से कृष्ण चेतना ही है, कृष्ण भावना ही है। नारद मुनि बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जब कंस होते हैं तो कंस इतना भयभीत था कृष्ण से कि जब रात को उसके कमरे में उसकी पत्नियां आती थी तो वो उनको कृष्ण बलराम के रूप में देखता था कि कृष्ण बलराम मेरा वध करने आ गए तो नारद मुनि कहते हैं कि जो इतनी चेतना थी, इतनी इतना भगवान का स्मरण था कंस का कि उतना मेरा भी स्मरण नहीं था तो ये कहने का भाव ये है कि नारद मुनि अपनी नम्रता व्यक्त कर रहे हैं और साथ साथ ये बता रहे हैं कि कभी कभी हमारी भौतिक आसक्ति के कारण किसी चीज से हमें जो भय होता है और उससे जो स्मरण होता है वह बहुत तीव्र होता है। तो यह जो स्मरण है यह अनुकूल नहीं है, फिर भी यह शुद्धिकरण का कारण बनता है। अनुकूल स्मरण क्या है कि हम भगवान को हमारे स्वामी, हमारे हमारे भ्राता के रूप में हम देखते हैं, पर किसी भी तरह से भगवान का स्मरण हो उससे शुद्धिकरण होता है। ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेश। तो मरीच जो है वह प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहा था और तपस्या कर रहा था, और जब उसने देखा कि रावण का रथ आ रहा है तो वो जंगल में दूर रहता था, तो जब देखा उसने तो आश्चर्यचकित हो गया। रावण अभी तक उसका राजा है, तो उसको आदर सत्कार किया और फिर उससे कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो रावण ने पूरा वृत्तांत बताया और उसने कहा कि ये राम मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे है उसने इस तरह से मेरे सेना का वध करके, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ और तुम कुछ अपना रूप बदल के किसी पद्धति से उसको मुझे हराने में मदद कर दो। अभी जैसे ही राम का नाम सुनता है मरीच कांपने लगता है, और जब रावण अपने वृत्तांत पूरा करता है तो मरीच की आंखें जो होती है एकदम भय से बड़ी हो जाती है और कहने लगता है कि कौन है वो तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे मित्र के रूप में, जो मौत का सांप है तुम्हारे गले में एक हार के रूप में डाल रहा है, कौन है वो व्यक्ति जो तुम्हें स्वयं के विनाश के मार्ग पे ले जा रहा है। कहते राम ऐसा व्यक्ति है कि उसके उसका सामना कोई नहीं कर सकता है, और भय से अपनी सारी कथा वो बताता है और बताता है कि मैंने सुना है कि जो राम है यह वास्तव में विष्णु का अवतार है, और उसको सारे देवताओं ने प्रार्थना करके बुलाया, उसके पास तुम कभी मत जाओ, जो हुआ है वो भूल जाओ। और वैसे भी जब रावण सुनने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो कहता है वैसे भी तुम सोचो ये सारा झगड़ा है ये राम ने शुरू नहीं किया है, ये शूर्पणखा ने शुरू किया है, तो इसीलिए उसने जो किया है वह उचित नहीं है। जब हमने उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो उसने रक्षा करने के प्रयास किए, तो जो आत्मविनाश के मार्ग पर तुम मत जाओ। तो अभी जब दूसरी बार ऐसे चेतावनी सुनता है रावण तो विचार में पड़ जाता है और वह ठीक है कहता है और चले जाता है वापस। और जब इस तरह से चले जाता है वापस तो अपने राजदरबार में जाके बैठता है और सोचता है कि बाद में वापस कभी मौका हो मिल जाएगा राम से युद्ध कर लेगा, पर अभी थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। पर इसी बीच जो शूर्पणखा होती है वह जब वो देखती है कि पहले तो उसका नाक कट गया और फिर उसके बाद में उसके खरदूषण उसके भाई थे उनका वध हो गया, सारे राक्षसों का वध हो गया, उसमें एक त्रिशिर नाम का बड़ा शक्तिशाली राक्षस था उसका भी वध हो गया, तो वो क्रोध और भय और विवशता से पागल हो जाती है और क्या करे, कहाँ जाए, कैसे करे, कुछ भी समझ भी नहीं आता है उसको, और इस तरह से भटकते घूमते बाद में उसको रावण अपने भाई की याद आती है। तो वास्तव में शूर्पणखा का पहले एक दूसरा राक्षस था, उसका नाम था दुष्ट बुद्धि, उससे विवाह होता है। और ये दुष्ट बुद्धि जो होता है वह रावण का पहले काफी अच्छा मित्र होता है, पर बाद में जब दुष्ट बुद्धि ज्यादा शक्तिशाली बनने लगता है तो रावण को उसके कारण थोड़ा भय लगने लगता है कि यह शायद मुझे चुनौती देगा, और फिर रावण ऐसी योजना बना लेता है, ऐसा षड्यंत्र बना लेता है जिससे कि वह दुष्ट बुद्धि का वध हो जाता है, वो एक तरह से दुष्ट बुद्धि को मार डालता है। तो इससे क्या होता है, शूर्पणखा को जब पता चलता है कि उसके पति का वध हो गया है, ऊपर से रावण शायद कारणीभूत है, तो वो उससे बहुत क्रोधित हो जाती है और इसीलिए वो उसकी बहन है पर वो राज दरबार में नहीं रह रही है और वह सोचती है कि मैं लंका में नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो खरदूषण के साथ दंडकारण्य में रह रही होती है। और वह पहले सोचती है कि मैं रावण के पास जाऊं और रावण से मदद मांगू या नहीं, तो सोचती है कि मुझे बदला तो लेना है इसीलिए रावण से मुझे मांगना ही पड़ेगा। और वह सोचती है कि अगर बदला लेना है, अगर राम का वध करना है, अगर कोई कर सकता है तो रावण ही वध कर सकता है, और अगर कोई नहीं कर सकता है तो मुझे दूसरे रूप से बदला मिल जाएगा। क्या बदला मिल जाएगा? कि मेरे भाई का, मेरे पति का वध किया था इसके द्वारा, तो राम रावण का वध कर देगा,
तो दोनों तरह से मेरा फायदा ही है।
तो इस तरह से वह अपने स्वार्थी भाव से विचार करके आ जाती है रावण के दरबार में। और वह भी जानती है कि अभी शूर्पणखा जो है वह भी राक्षसी है, तो राक्षस विचारधारा जानती है। तो अगर मान लीजिए किसी का अपमान हुआ है और कुछ परिवार की कोई बात है, तो अगर बताना है तो घर में जाके बताना है, पर रावण शूर्पणखा जानती है कि अगर रावण को उकसाना है तो खुले दरबार में उकसाना चाहिए। तो इसीलिए वो जाती है और खुद जब दरबार में रावण बैठे होते, सीधा वो रावण के दरबार में जाती है और वो जाके उसके सामने गिरती और फूट फूट के रोने लगती है। बोलते रावण कहते क्या हो गया तुम्हें, क्यों इस तरह से रो रही हो? और जब उठ के खड़ी होती है तो देखते हैं कि उसका पूरा नाक कट गया है। और क्या, किसने ऐसा किया तुम्हें? तो अभी जब अकंपन बताता है सब कुछ तो वो शूर्पणखा के नाक कटने का बताता नहीं है,
क्योंकि वो सोचता है ये उससे रावण और क्रोधित हो जाएगा।
तो इसीलिए किसने किया ऐसे, वो पूरा बताता है कि वो बता दिया है। वो बताने की जगह पे क्या बोलती है शूर्पणखा कि तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे ही राज्य में तुम्हारे जो नागरिक है उनका संरक्षण करना तुम्हारा कर्तव्य है, और ये नागरिक तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारे परिवार के सदस्य हूं, और मेरा संरक्षण करना तो तुम्हारा कर्तव्य है, और लगता है कि तुम इस राज ऐश्वर्य से और अपने रानियों से इतने आसक्त हो कि तुम अपने कर्तव्य को भूल गए हो और उन्मत्त हो गए हो, इसीलिए मुझ पे ऐसा अत्याचार हुआ है और तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। तो इस तरह से जब वो उसको उकसाते हैं तो पूरे भरी सभा में जब ऐसे सुनता है तो अभी कैसे होता है कि कितना भी व्यक्ति आसक्त हो, कितना भी व्यक्ति इंद्रतृप्ति से आसक्त हो, कितना भी दुर्गुणी हो वो व्यक्ति, दूसरों के सामने उसको दुर्गुण बताना अच्छा ही लगता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज को भी जब हिरण्यकशिपु बताते, प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु को बताते हैं कि तुम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो, तुम्हारा जो अनियंत्रित मन और इंद्रिया है यही सबसे तुम्हारा बड़ा शत्रु है, तो हिरण्यकशिपु क्या कहते हैं, क्या तुम सोचते हो मेरे इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है? तो क्या वो सोचते है, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे इंद्रियों पर ज्यादा नियंत्रण है? वास्तव में हिरण्यकशिपु कुछ भी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वास्तव में पूरा उसके इंद्रियों का उस पर नियंत्रण है, पर वह सोचता है कि मैं आत्मसंयमी हूं। तो उसी तरह से जब रावण सुनता है तो क्रोध हो जाता है, क्या हुआ बताओ। और जैसे ही वो राम के बारे में उल्लेख करने लगती है तो तुरंत रावण का जो क्रोध ठंडा होने लगता है, क्रोध ठंडा होने लगता है, और शूर्पणखा भी देख रही होती है, और जब समझ जाती है कि ये रावण सुनने वाला नहीं है, रावण उत्तेजित होने वाला नहीं है, तो फिर वह जानती है कि रावण को अगर उकसाना है तो उसकी कमी क्या है, और उसकी कमी क्या है कि वह काम वासना से बहुत आसक्त है, इसीलिए वो बताती है हे रावण तुम जानते हो मैं वहां पे गई क्यों थी? अभी क्यों गई थी उसको खुद को पता है, पर क्या होता है वह राम से आसक्त हो गई होती है, और वह राम से पहले आसक्त भी कैसे होती है, जब जंगल में जा रही होती है तो उसको मानव के मांस की खुशबू,
अभी खुशबू बोल रहा है जब बोल रहा है उसका, वो
गंध आते है, सोचते वाह मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, मानव का मांस मिला नहीं बहुत दिनों से खाने को। और जब वो देखती है प्रभु श्री रामचंद्र को तो इतना आकर्षक हो जाता है कि वो जो इंद्रतृप्ति चाहिए होती है पर अभी मांस के जगह पे अभी काम वासना में परिणत हो जाती है, पर जब रावण को बोलना होता है, रावण को उकसाते बोले तुम्हें पता है मैं वहां पे क्यों गई थी, वो राम है उसकी उसके साथ एक स्त्री थी और वह इतनी सुंदर स्त्री थी कि मैंने सोचा कि मेरा प्रिय भाई रावण इस स्त्री के बिना बिल्कुल अपूरा रहेगा।
तो इसीलिए
मैं सोच रही थी कि वो स्त्री को मैं तुम्हारे पास लेके आऊंगी और उस और फिर वो सीता के सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं और जैसे ही ये वर्णन होने लगता है तो क्या होता है, भगवत गीता में बताया गया है ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बताते हैं कि जैसे ही व्यक्ति का चिंतन होने लगता है इंद्र तृप्तियों के विषय पे तो उससे क्या होता है, धीरे 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 पहले वासना आ जाती है, फिर वासना से क्रोध आता है, क्रोध से फिर मोह आ जाता है, स्मृति भूल चले जाती है, फिर बाद में बुद्धि नाश हो जाता है। तो क्या होता है, रावण का बुद्धि नाश हो जाता है और भले ही उसने जो अभी तक कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो पहले सब कारण थे अभी तक कारण सत्य है वो, पर बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर वह सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके ये प्राप्त करना ही है और पुनः जाता है मरीच के पास। और जब वो जाता है इस बार मरीच के पास तो रावण के पास अपना जो उसके रावण का भाई जो होता है, सगा भाई नहीं होता है, कुबेर जो होता है, उससे उसने पुष्पक जो विमान है वो चुराया होता है, पर इस समय जाता है तो अपना पुष्पक विमान नहीं लेके जाता है, वो अपने रथ के साथ जाता है और वो रथ से जाता है और जाता है सीधा मरीच के पास। मरीच अपने ध्यान में बैठा है, जैसे देखते रावण वापस आ गया, आश्चर्यचकित हो जाता है और वो कहता है, रावण कहता है कि तुरंत आओ मेरे साथ और मुझे मदद करो सीता का अपहरण करने में। तो मरीच कहता है अभी मैंने तुमको सब कुछ बताया था, उसे तुम विनाश के मार्ग में जाओगे। तो रावण क्या बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि पूरा विनाश हो गया, वो कहते हैं मैं तुमसे सुझाव मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हें आदेश देने के लिए आया हूं। तो मारी सोचने लगता है कि मैं क्या करूं मैं। तो अभी उसकी जो विचारधारा है उसको हम अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। वह सोचता है कि अगर मैं रावण के आदेश का पालन नहीं करूंगा, राधा गोकुलानंद भगवान की जय, कि रावण ने कह दिया कि अगर तुम मेरा सहयोग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तो मारी सोचने लगता है कि अभी तो मृत्यु से बचने वाला नहीं हूं मैं, अगर मृत्यु ही आनी है तो बेहतर है कि रावण के हाथ से मरूंगा तो कहां गति होगी मुझे पता नहीं, पर अगर मैं राम के हाथ से मरूंगा तो शायद तो मुझे अच्छी गति मिल जाएगी। तो एक तरह से जो विचार है, यह व्यक्ति जो है सोच रहा है भविष्य में क्या होगा उसके बारे में, और आध्यात्मिक ज्ञान है उसको कि अगर भगवान के हाथों से मृत्यु होती है तो उससे उत्तम गति मिलती है। पर दूसरी ओर से देखा जाए तो यहाँ पे भी जो भाव है यह भक्ति के अनुकूल भाव नहीं है। ये सोच क्या रहे हैं कि मेरी क्या गति होगी, भगवान के सेवा के लिए क्या उचित है, यह विचार नहीं है कि भगवान के सेवा के लिए क्या मुझे ऐसे मोह माया में ऐसे षड्यंत्र में सहभागी होना चाहिए कि नहीं, वो भाव नहीं है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक चेतना है उसके अलग अलग स्तर है। तो एक स्तर है भगवान के बारे में सोचना, पर उससे ऊंचा स्तर है भगवान के लिए सोचना। उसका मतलब फर्क क्या है, फर्क यह है भगवान के बारे में सोचना मतलब हाँ मैं यहां पे हूं, मैं बहुत दुखी हूं, भगवान आप मुझे बचाओ, वो भगवान के बारे में सोचना, अच्छा है। हम इस भौतिक जगत में किसी और चीज के बारे में सोचने से बेहतर है कि हम भगवान के चिंतन करें। पर भगवान के लिए सोचना मतलब कि भगवान की सेवा के लिए क्या अनुकूल है वह सोचना। तो जो भगवद गीता में हम देखते हैं अंत में अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन यह नहीं कहते हैं कि हाँ भगवान आपने बताया कि आपका स्मरण करना चाहिए तो मैं जंगल में जाता हूं और ध्यान करूंगा। नहीं, करिष्य वचनम दवा, वो भगवान के लिए सोचना। तो इसलिए यह जो है भगवान के लिए सोचना मतलब जैसे कोई माँ है वह अपने बालक से छोटे प्रेम करते तो उसके बारे में सोचती है उसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए अच्छा होगा, तो ये अच्छा है उसके बारे में सोचना। पर उसके लिए सोचना मतलब उसको क्या जरूरी है वो मुझे भी करना चाहिए। तो प्रेम का एक लक्षण है कि हम जिसके बारे में प्रेम करते हैं उनके बारे में सोचते हैं, पर उससे ऊंचा है कि हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यह मरीज क्या है, वह भगवान के बारे में सोच रहा है और सोच रहा है कि अंत के समय में मुझे भगवान की स्मृति करनी चाहिए, पर भगवान की सेवा करना का भाव नहीं है वहां पे। तो इसीलिए भगवान की स्मृति आवश्यक अच्छी है, आवश्यक है, अच्छी भी है, पर उससे ऊंचा है भगवान की सेवा करना। तो महारिज जो है भगवान की स्मृति चाहता है पर भगवान की सेवा का भाव नहीं है यहाँ पे। और फिर महारिज और रावण अपनी योजना बनाते हैं और यहाँ पे विप्र श्यामचंद्र अपनी कुटिया में रह रहे हैं। और जब वो रह रहे हैं तो पहले श्री रामचंद्र जंगल में पहले जब निकलते हैं वनवास के लिए तो पहले चित्रकूट में जो अयोध्या के पास में वहां पे रहते चित्रकूट आद्र निकेतन राम। और फिर दंडकावन जन पावन राम, वो दंडकवन में रहते हैं। और दंडकवन में जब रहते हैं तो तभी जो शुरुआत में ही जटायु जो होता है वह उनसे मिलता है। गृध्रादिप संसेवित राम, गृध्रादिप जो होता है जटायु वो गीदड़ जैसे होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, तो उनसे मिलता है। और वह दशरथ महाराज को पहले से जानता है तो इसीलिए वह पुरुष रामचंद्र को अपने पुत्र के समान देखता है। वो कहता है कि जब तुम जंगल में रहने वाले हो तो मैं वहां पर पास में ही रहूंगा और जो भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगा। तो अभी जब इसीलिए वो पास में ही रह रहा होता है। और जब इस तरह से मरीच और रावण अपनी योजना बनाते हैं तो मरीच एक हिरण का रूप लेता है और बहुत ही सुंदर हिरण होता है। और भी जो जानवर होते हैं वो जानवरों के पास ऐसी शक्ति होती है कि वह जो हम आंखों से देखते हैं उसके अलावा भी देख के समझ सकते हैं। मतलब अगर कोई दो जुड़वे भाई हैं और दो जुड़वे भाइयों में से एक भाई का एक पालतू कुत्ता है तो हम दोनों को देखेंगे तो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, पर वो कुत्ता है समझ जाएगा कौन मेरा मालिक है और कौन नहीं है। तो क्या है, वो उनको सूंघना और अलग अलग पद समझ जाता है। तो जैसे ही ये मारीच एक हिरण का रूप लेके आता है तो बाकी सब हिरण वहां पे पास में होते हैं, पहले देखते हैं ये हिरण कहां से आ गया, उसके थोड़ा पास में आते हैं और तुरंत भयभीत हो जाते हैं। और उससे हिरण चले जाता है वहां से और ऊपर से पंछी है वो भी उड़ने लगते हैं, वो समझ जाते हैं कि जानवर कुछ अजीब ही है। और खेलते खेलते जब सीता के वह जो कुटिया के पास सीता बाहर कुछ फूल तोड़ रही होती है वहां पे आ जाता है और वहां पे खेलने लगता है। और जब सीता देखती है सीता कहती है कि प्रभु श्री राम आप कृपया बाहर आ जाइए। और जब प्रभु श्री रामचंद्र बाहर आते हैं तो वह कहते हैं कि देखिए कितना सुंदर हिरण है ये। और जब प्रभु श्री रामचंद्र आते हैं तो साथ साथ लक्ष्मण भी आते हैं। और जब भी वो सभी राक्षसों का वध होता है तब से राम और लक्ष्मण ने योजना की होती है कि ये राक्षस जरूर बदला लेने का प्रयास करेंगे, इसीलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। तो अभी जब सीता कहते कितना सुंदर ही है ये, तो प्रभु श्री रामचंद्र जो होते हैं वह सोचते हैं कि सीता ये एक राजकुमारी है और इतने ऐश्वर्य में रह रही थी और अभी उसको मेरे कारण जंगल में रहना पड़ रहा है। तो सीता कहती है कि कृपया आप मेरे लिए ये हिरण लेके आ जाइए और ये हिरण मैं मेरे साथ मेरे एक पालतू जानवर के समान रखोगे, और फिर जब हमारा वनवास अंत हो जाएगा तो फिर तो हम जंगल में वापस जाएंगे, तो मैं ये माता कौशल्या को एक भेंट के रूप में दूंगी। तो अभी यह जब होता है, यह सारी घटना हो रही है, यह लगभग 12वें साल के अंत के समय में हो रही है। तो कितने साल का वनवास था? 14 साल का। तो 12वें साल के बाद, 12वें साल जब हो जाता है तो 13वें साल के बीच में जो होता है यह सब होता है घटना। इसके बाद में मतलब जो सीता के पास एक साल होता है पूरा, एक साल वो वनवास में रहने वाले होते हैं, और उसके बाद में तुरंत वो वापस आ जाते हैं, और उसके बीच में 4 महीने उनको जंग, 4 महीने जो होते हैं जब सुग्रीव का राजा बनता है उसके बाद में बारिश होती है, चातुर्मास होता है, तो वो बारिश के कारण जा नहीं पाते, और उसके बाद में कुछ महीने उनको लगते हैं सारी सेना को संगठित करके लंका तक जाने के लिए, और लंका के पास जो सागर है उसको पार करने के लिए। तो यह जो अभी सब उनको अपेक्षा होती है कि अभी कुछ ही समय में, अभी लगभग 12 साल वो वनवास में रह चुके हैं, 12 से अधिक साल, और भी अपेक्षा है कि हम जल्दी ही चले जाएंगे वापस। तो सीता सोच रही है कि यह जो है कुछ समय के लिए मेरे साथ ही रहेगा, और फिर बाद में मैं कौशल्या को दे देगी। और श्री रामचंद सोचते हैं कि सीता के लिए मैं इस जंगल में कुछ भी नहीं कर पाया हूं, तो अगर उसको एक छोटी सी मांग है तो मैं उसको पूरा करना चाहिए। और जो लक्ष्मण होता है बहुत संशयी होता है, सोचता है कि ये कुछ दाल में काला है, ये हिरन, इतना सुंदर हिरन मैं कभी देखा नहीं है। तो वो हिरन जो होता है, कुछ हिरन के साधारण कुछ रंग 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 होता है, पर ये इसका बहुत ही अप्रतिम रंग होता है। तो कहता है मुझे लगता है कि ये हिरन वास्तव में हिरन नहीं है, ये मुझे लगता है राक्षस है। और यहां तक लक्ष्मण कहता है कि मुझे लगता है कि ये मारीची है, कि ये मार वो जो बहुरूपी राक्षस था वही यहाँ पे इस रूप में आया है। तो सीता कहते हैं कि नहीं, देखो तुम देखते हो कितना सुंदर है ये हिरन है, और कितना अच्छी तरह से खेल रहा है, कूद रहा है, इधर उधर जा रहा है, और तुम इतने संशयी क्यों हो। तो श्री रामचंद्र से कहते कृपया आप मेरे लिए ये हिरन ले आइए। तो श्री रामचंद्र सीता को ना नहीं कह पाते, इसलिए वो कहते लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम यहीं पे रहो और तुम सीता का संरक्षण करो, मैं जाऊंगा और उसको हिरण को लेके आऊंगा। तो लक्ष्मण वो प्रभु रामचंद्र के आदेश को टाल नहीं पाते हैं, वो अभी तक संशय होता है, पर वो कहते ठीक है मैं यहाँ पे जरूर संरक्षण करूंगा। तो या इसका अभी आचार्यों ने बताया है कि किस तरह से यह जो है वो रामायण वाल्मीकि रामायण वर्णन आता है कि अभिराम, कि उनके पास राम है, पर वह सोच सीता देवी, अभी सीता जो है वह भगवान की, वो राधा रानी के ही एक रूप है, और वह उनके सारे कार्य पूर्णतया दिव्य है, पर उसके बावजूद हम हमारे लिए वहां से कुछ सीख सकते हैं। सारी भगवान की लीला चल रही है, वह दिव्य स्तर पे है, पर हमारे लिए हम कुछ सीखते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र उनके साथ में है, पर वह कुछ और चाहती है, और वो कुछ और के प्राप्ति के लिए वह क्या करती है, वह कहती है कि प्रभु श्री रामचंद्र को खुद से दूर भेज देती है, और बाद में हम देखते हैं कि जो लक्ष्मण है उनको भी दूर भेज देती है। तो क्या होता है, इस भौतिक जगत में हमें बहुत सी चीजें प्रलोभन करने के लिए आती है, और ऐसे नहीं है कि हमें सब चीजें टालनी है भौतिक जगत की, जो हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमेशा हमें चौकन्ना रहना है क्या हम भगवान को भी हमारे हृदय में रख रहे हैं, या वो चीजों को हमारे हृदय में हम लेके आ रहे हैं। तो जो सीता है इस तरह से पहले रामचंद्र को भेज देती है, तो जैसे ही रामचंद्र वहां पे आने लगते हैं तो उनका उद्देश्य होता है कि ये हिरण को पकड़ना और उसको लेके आना, और वो हिरण दौड़ने लगता है, और जैसे ही वो हिरण दौड़ने लगता है प्रभु रामचंद्र दौड़ने लगते हैं, और वो हिरण इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, और प्रभु रामचंद्र काफी समय तक जाते हैं, वो ऐसे लगभग 1 घंटे से अधिक वो इस हिरण के पीछे जाते रहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि ये जो हिरण को जीवित लाना है, इसीलिए वो तीर नहीं मारते उस हिरण की ओर। पर बाद में वो जब उसको लगता है कि मैं हिरण तक पहुंच ही गया हूं, वो तेज से दौड़ रहे पहुंचते, तो अचानक वो हिरण अदृश्य जैसे हो जाता है, और फिर बाद में कुछ और दूर जगह पे वापस प्रकट हो जाता है। तो काफी समय तक तो ऐसे चलता है, तभी प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है, ये जरूर जो लक्ष्मण ने कहा था मारीची है। तो इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि मैं इसका वध कर दूंगा। और जैसे ही वो हिरण दौड़ रहा था ऊपर कूदता है, तो प्रभु श्री रामचंद्र अपना धनुष निकालते हैं और तीर मारते हैं। और जैसे ही तीर मारते हैं वो हिरण के शरीर में जाके लगता है, तो हिरण जोर से प्रभु श्री रामचंद्र की आवाज में बिल्कुल वैसे ही आवाज निकाल के कहता है कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। और इस तरह से जब वो जोर से पुकारता है और गिर जाता है नीचे, और जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र सुनते हैं यह, तो समझ जाते हैं कि वास्तव में ये पूरा षड्यंत्र था। और अभी वो जानते हैं कि जो राक्षस होते हैं प्रभु श्री रामचंद्र एक मानव की लीला कर रहे हैं, इसीलिए वो साधारणतया अपनी दिव्य शक्ति दिखाते नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, तो जो राक्षस है, क्योंकि वो राक्षस मानवों से बहुत शक्तिशाली होते, तो उनका आवाज भी जो होता है मानवों से बहुत शक्तिशाली होता है, तो इसीलिए वह जब चिल्लाता है तो वो आवाज गूंजते गूंजते कुटिया तक भी पहुंच जाता है जहां पे लक्ष्मण और सीता है। पर प्रभु श्री रामचंद्र सोचते हैं कि ये राक्षस इतने जोर से चिल्लाया था, अभी मैं चिल्लाऊंगा तो वो आवाज पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्या है कि राक्षसों की शक्ति मानव से शक्ति ज्यादा होती है, और भगवान एक मानव के रूप में लीला कर रहे हैं। सोचते अभी क्या करूं मैं, तो जैसे ही वो मारीच तक दौड़ते दौड़ते पहुंचते और देखते कि मारीच का वध हो गया है, वो अभी जीवित नहीं है, क्योंकि वो अभी और कुछ तो वो योजना नहीं करे। वो समझ जाते हैं कि राक्षस योजना की होगी, और वो सारी योजना क्या है कि लक्ष्मण को वहां से बाहर लाने के लिए। जब इस तरह से वो समझ जाते, तुरंत वो दौड़ के तेजी से जिस मार्ग से आया है उस मार्ग से कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं। और इधर जब सीता लक्ष्मण इंतजार कर रहे होते, लक्ष्मण चारों ओर देख रहे होते, अचानक आवाज आती है जोर से, लक्ष्मण लक्ष्मण। और जैसे आवाज आती है तो सीता एकदम भयभीत हो जाती है। वो कहती है, लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र खतरे में है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण बिल्कुल विचलित नहीं होते, और वह कहते हैं कि वास्तव में इस तीनों लोकों में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो प्रभु श्री रामचंद्र को किसी खतरे में डाल सकती है, और यह जो है यह केवल वो जो बहुरूपिया मारीच है उसका ही आवाज है ये। तो जब सीता ये सुनती है, वो जो चिंता होती है अपने प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति, उसके कारण वो इतनी विचलित हो जाती है, इतनी मोहित हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, यह आवाज तुमने सुना नहीं, यह आवाज वास्तव में राम का ही आवाज था, राम खतरे में है, और खतरे में वो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। वो कहते हैं कि राम को कोई खतरा नहीं है, और वैसे भी राम ने मुझे आदेश दिया था कि आपके साथ मुझे रहना चाहिए, तो इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करो, राम अभी आ ही जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत चिंता होती है किसी चीज की, तो जब चिंता होती है तो हमें लगता है मुझे कुछ करना चाहिए, अभी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जब चिंता आती है तो शांत रूप से बैठ के विचार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जो चिंता भय जो होता है, इससे सीता इतनी विचलित हो जाती है, वो सोचती मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, और क्या करे। वो सोचते कि लक्ष्मण क्यों नहीं जा रहा है, लक्ष्मण को जाना चाहिए। सोचते कि अगर कुछ राम को हो जाएगा और हम यहीं पर रुके रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो कैसे वो संभव है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो जब देखते हैं कि कुछ भी नहीं सुन रहे लक्ष्मण, तो वास्तव में जो वचन अभी सीता कहती है लक्ष्मण के प्रति, वह वैसा विचार न तो सीता ने पहले लगभग लक्ष्मण के बारे में किया था, और न ही लक्ष्मण सीता के बारे में किया था। वह कहते हैं कि अभी मैं समझ गई कि तुम वास्तव में जंगल में क्यों आए, तुम वास्तव में तुम्हारी मेरी और बुरी दृष्टि थी, और तुम कुछ मौका ही ढूंढ रहे थे कि अभी राम रास्ते से निकल जाएंगे कि तभी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, पर तुम समझ लो लक्ष्मण कि मेरा मृत्यु हो जाएगा, पर मैं किसी और पुरुष के पास नहीं जाऊंगी, और तुम्हारे कारण उधर राम श्री रामचंद्र का वध हो जाएगा और यहाँ पे मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर तुम्हारे जो बुरी इच्छा है वह कभी पूरी नहीं होगी। तो जब लक्ष्मण ये वचन सुनते हैं तो मानो उनके हृदय पे ऐसे हजारों वज्र का प्रहार हो रहा है। वो कहते हैं कि वास्तव में तुम सीता, तुम मेरी माँ के समान हो, और जो तुम वचन कह रहे हो वह ऐसे वचन है कि मैं कभी सहन नहीं कर सकता। सीता, अभी लक्ष्मण इतना वेदनाग्रस्त हो गए थे, पर फिर भी सीता जो होती है अपने चिंता से, क्रोध से, भय से इतनी मोहित हो जाती है कि लक्ष्मण का जो टूटा हुआ हृदय है उसको भी देख नहीं पाती। वो कहती है कि अगर तुम्हारी कोई बुरी इच्छा नहीं है तो तुम तुरंत जाओ और राम को बचाओ, तुम कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। और जब इस तरह से बता दिया है तो लक्ष्मण का हृदय जो होता है वो टूट जाता है। वो कहता है कि हे सीता, मैं तुम्हारे वचनों को सहन नहीं कर सकता और मैं राम के आदेश का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, पर फिर भी तुम ऐसे वचन कह रहे हो इसलिए मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि ये सारे राक्षसों की योजना है और जब मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो आप यहाँ पे नहीं रहोगे, तो कृपया आप ऐसे वचन मत कहो। सीता अभी तक इतनी क्रोध थी कि वो कहती है कि जाओ तुम यहाँ से, तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, वो ऐसे कहने लगते वचन। तो लक्ष्मण वहाँ से चले जाते हैं और वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है इसके बारे में, पर जो रामलीला है अनेक ग्रंथ में बताई गई है। तो उसमें से बताया था कि लक्ष्मण जो होते हैं एक लक्ष्मण रेखा बनाते हैं उस कुटिया के चारों ओर, जिससे कि सीता का संरक्षण हो जाए। और फिर लक्ष्मण दौड़ते दौड़ते जिस दिशा में राम गए हैं उस दिशा में जाने लगते हैं, और जहाँ पे राम के पद चिन्ह है और उसके आगे वो बड़े वो हिरण के पद चिन्ह है, तो उस दिशा में तेज से जाने लगते हैं और जा रहे होते हैं और फिर वो चिल्ला रहे होते राम राम, और फिर इधर ऋषि रामचंद्र दौड़ते हुए आ रहे होते। उनको भय होता है कि लक्ष्मण सीता को छोड़ के आ जाएगा तो क्या होगा, और वो घने जंगल में गए होते। जब क्या साधारण कोई व्यक्ति जंगल में जाता है तो फिर वह कोई जंगल में रास्ता होगा तो रास्ते से जाता है, पर जानवरों को रास्ता नहीं लगता है, जानवर जंगल में ही रहते तो कहीं भी जाते हैं। तो हिरण जहाँ जा रहा होता है उसके पीछे पीछे पुरुष रामचंद्र गए होते हैं, तो इसीलिए जो मार्ग है वो भी स्पष्ट नहीं होता है, सरल मार्ग भी नहीं होता है, स्पष्ट मार्ग भी नहीं होता है। पुरुष रामचंद्र दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं इधर से, लक्ष्मण इधर से दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, और फिर बाद में दोनों काफी समय के बाद वो दोनों जगह मिल जाते हैं। और राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने जो कहा था वही सत्य था, वो मरी जीता, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि सीता ने मुझे भेज दिया यहाँ पे, और सीता ने भले ही भेजा हो तुम्हें, राम कहते हैं, पर तुम यहाँ पे क्यों आए, मैंने तुम्हें कहा था तुम सीता के साथ ही रहो। तो वो कहते हैं कि नहीं, सीता ने मुझे ऐसे वचन कहे जो मैं दोहरा नहीं सकता। तो प्रभु श्री रामचंद्र क्रोध हो जाते हैं, तो वो सीता भावुक है, जो उसने कहा तुमने उतना गंभीरता से क्यों लिया। और प्रभु श्री रामचंद्र इतने क्रोधित हो जाते हैं कि लक्ष्मण की ओर बिना देखे ही वो दौड़ने लगते हैं कुटिया की ओर। तो अभी लक्ष्मण जो होते हैं, क्या होता है कभी मृदंग होता है, दोनों बाजू से बचता है उस तरह से दोनों ओर से वो पिट जाते हैं, पर मृदंग जब बजता है तो अच्छा मधुर आवाज आता है। पर यहाँ पे जो होता है, लक्ष्मण पहले वो सीता के वचनों से वो उद्वस्त हो जाते हैं एक तरह से, और अभी राम के डांट से भी और दुखी हो जाते हैं, पर वो भी राम के पीछे दौड़ने लगते हैं, और दौड़ते दौड़ते वो तेजी से इधर आ रहे होते हैं। पर इसी बीच जैसे ही लक्ष्मण बाहर निकलता है तो रावण जो होता है वहीं पे सब कुछ वो झाड़ियों में छिपा हुआ है, और जो राक्षस होते हैं वो अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं, शूर्पणखा ने अलग रूप लिया होता है, तो वो रुका होता है। तो अभी वो सोचता है कि राम चले गया तो लक्ष्मण अकेला है, शायद मैं लक्ष्मण का वध करके मैं सीता का अपहरण कर सकता हूँ। पर वो सोचता है कि ये राम की इतनी शक्ति है, अभी तक लक्ष्मण ने अपनी शक्ति दिखाई नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है जो जो ताटक और सुबाहु हो तो उनका तो वध हो गया होता है, और मरीच ने राम की ही शक्ति के बारे में वर्णन किया होता है। और यहाँ पे भी जब ये सारे खरदूषण उनके सेना का उनके खरदूषण उनके सेना का होता है, वह भी राम ही करते हैं, क्योंकि तभी प्रभु श्री रामचंद्र जो होते हैं वह सीता से लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम सीता को एक गुफा में ले जाओ और तुम उस गुफा के द्वार पर रहकर सीता का संरक्षण करो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता हूँ। नहीं, अगर हम दोनों युद्ध करेंगे कि हम तो हमारा दोनों का ध्यान एक जगह युद्ध की ओर होगा, दूसरे सीता की ओर होगा, तो इसे तुम सीता का संरक्षण करो। तो इसीलिए रावण ने अभी तक जो सारी ख्याति सुनी थी वह लक्ष्मण के बारे में नहीं सुनी थी, राम के बारे में ही सुनी थी। तो इसीलिए रावण सोच रहा होता है कि भले लक्ष्मण है, मैं लक्ष्मण का वध करके सीता को ले जा सकता हूं। पर रावण इतना वास्तव में वो मिथ्या अहंकारी होता है, वह सोचता है कि ये राम और लक्ष्मण क्या है वास्तव में, यह तो जंगल में रहने वाले भिखारी है अभी। तो वो सोचता है कि मैं अगर सीता को मेरा सुंदर रूप दिखाऊंगा और मेरे ऐश्वर्य शक्ति के बारे में बताऊंगा तो सीता स्वेच्छा से ही आ जाएगी। तो अगर मैं लक्ष्मण का वध करना पड़ा तो फिर सीता स्वेच्छा से नहीं आएगी, तो इसीलिए पहले लक्ष्मण को जाने दो, बाद में मैं स्वयं आ जाऊंगा। तो इसीलिए रावण पूरी योजना के साथ वह जब मारीच की आवाज से सुनकर लक्ष्मण चला जाता है तो तुरंत वो जहां पर छुपा हुआ है वहां से बाहर आ जाता है। और उसकी योजना होती है कि वह सीता को प्रलोभित करेगा और सोचता कि क्योंकि उसको पहले एक बार शाप मिला है कि वह पुनः किसी स्त्री पर कोई जबरदस्ती करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए वह चाहता है कि सीता को किसी भी तरह से वह उसके प्रतिकूल न करने का प्रयास करे, वह सीता को प्रलोभित करके उसको अनुकूल करके ले जाना चाहता है। इससे पहले जब रावण चला जाता है तो सोचता है कि मैं जाऊं कैसे पहले, तो वह जानता है कि एक क्षत्रिय राजा की पत्नी है, क्षत्रिय राजा की पुत्री भी है। तो क्षत्रिय संस्कृति का यह लक्षण होता है कि वह हमेशा साधुओं का आदर करते हैं, तो इसीलिए वह सोचता है कि पहले मैं एक साधु का रूप ले लूंगा। और साधु का रूप लेके वह सीता के सामने आता है और भिक्षाम देही कहता है। तो जब सीता जब वहां पे वो चिंता से व्यस्त होती, जैसे ही देखती है कि यहाँ पे एक साधु आया है, तो वो कहती है कि कृपया आप बैठिए यहाँ पर, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, फल फूल लेके आता हूँ, फल वगैरह लेके आती हूँ। तो जैसे ही रावण वहां पे आने लगता है तो वह अपनी शक्ति से देखता है कि यहाँ पे कुछ खतरा है, और जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा पालन कर लगता है तो चलने लगता है वो। तो अभी जो सारी लक्ष्मण रेखा होती है वह ऐसे स्थूल रेखा नहीं होती है, कभी कभी वो आप चित्रपट में देखे आपने अपना अपने तीर से एक रेखा बनाते हैं, तो भले ही वैसे बनाई है वो तीर के जो रेखा है वास्तव में शक्ति जो है वो सूक्ष्म है, वो स्थूल शक्ति नहीं है। तो जो सीता है वो कहती है कि आप कृपया यहाँ अंदर आके बैठिए और मैं आपको कुछ देती हूँ और फिर मेरे पति जो है वो थोड़े समय में आ जाएंगे। तो इस तरह से जब वो बताती है तो वो जो साधु के रूप में आया होता है रावण, वो कहने लगता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आप तो एक राजकुमारी के समान हो। और ऐसे बताया वहां पर बताता है, रामायण में बताया गया कि रावण भी सीता के सौंदर्य का गुणगान करने लगता है। रावण सोचता है कि पहले मैं सीता का गुणगान करूंगा उसके सौंदर्य का, तो क्या होगा वह उससे प्रभावित हो जाएगी और क्या, फिर उसके बाद में उसके सौंदर्य का गुणगान करने के बाद फिर मैं मेरे शक्ति और समृद्धि का गुणगान करूंगा और फिर क्या होगा हमारी जोड़ी बन जाएगी। ऐसा उसका अपना ही भ्रांत धारणा चल रही होती है। तो वास्तव में वो रावण जो होता है सीता के सीता से इतना आकर्षित हो जाता है काम वासना के साथ, तो वह साधु के रूप में है और वह सीता के सौंदर्य का गुणगान कर रहा है, तो सीता को थोड़ा ये उचित नहीं लगता है, पर फिर भी वो क्योंकि साधु के रूप में, तो वो सोचते हैं कि आप वो कौन है, तो वो अपने साथ वो बताते हैं कि मैं जनक महाराज की पुत्री हूँ और रामचंद्र की पत्नी हूँ, और मैं अभी यहाँ पे मेरे पति का इंतजार कर रही हूँ, वो जरूर आएगी अभी और आपका और अच्छी तरह से स्वागत करेगी। तो जब इस तरह से बात चल रही होती है तो रावण जो है वह सोचता है कि यह सीता बड़ी पतिव्रता है, ऐसे सीधे तरह से नहीं आएगी मेरे साथ, तो इसीलिए वह सोचता है कि मैं अभी ये सारी बात चल रही है, वैदिक संस्कृति जो होते हैं कि पुरुष स्त्री में थोड़ा हमेशा अंतर रहता है, तो अभी तक रावण जो है बाहर ही होता है और सीता जब बात कर रही है तभी वो कुछ अतिथि के लिए कुछ अन्न जो है ऐसे सवार ला रही है इधर से एकत्रित कर रही है और फिर वो वहां सामने आके रख देती है उसके लिए। जैसे ही रावण वहां पे रावण को अंदर आने का प्रयास करता है तो अग्नि से वो जलने लगता है। यह अग्नि सीता को सीता जब देखती है, सीता को अभी तक राम के चिंता में ही वो व्यथित है और किसी न किसी तरह से वो अतिथि की भी सेवा करने का प्रयास कर रही है, और तभी रावण कहता है कि मैं बहुत समय से इस जंगल में घूम रहा था, भटक रहा, मैं प्रवास कर रहा था और मैं बहुत अशक्त हो गया हूं, तो अगर आप कुछ भिक्षा देना चाहती हो तो मैं अभी अंदर नहीं आ सकता, कृपया आप बाहर आके भिक्षा दे दो। तो अभी लक्ष्मण ने सीता से कहा होता है कि कृपया आप इस रेखा के बाहर मत जाओ, और सीता भी सोचने लगती है कि ये जो अतिथि आए हैं, ये साधु है, क्या करूं मैं अभी, तो सोचते हैं कि कृपया आप अंदर आके लीजिए। वो कहता है कि मैं अंदर नहीं आ सकता, क्या आप एक अतिथि का अपमान करेंगे इस तरह से, आप मेरा मैं आपके घर में भिक्षा के लिए, क्या आप भिक्षा नहीं दोगे मुझे, तो सीता सोचती है क्या करें, और जब इससे सोचती है तो वह स्वयं उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाती है, और जैसे ही लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाती है तो जो रावण है वह ये अभी ये विस्तारित संवाद है, मैं संक्षिप्त में यहाँ पे बता रहा हूँ, पर पहले रावण जब लक्ष्मण रेखा के अंदर ही है, रावण जो है सीता का गुणगान करके उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है, पर जब प्रभावित नहीं होता है वो देखता है तो जैसे ही सीता बाहर आती है तो रावण क्या करता है, अपना राक्षस का रूप धारण कर लेता है और वह कहता है कि मैं असुरों का राजा, राक्षसों का राजा हूँ, और मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मेरा सारा राज्य जो है सोने का है, और मैंने स्वर्ग का राजा है उसका भी हरा दिया है, और न केवल मैंने हराया है इंद्र को, मेरी इतनी शक्ति के मेरे पुत्र ने भी इंद्र को हरा दिया है, और इस तरह से वो खुद का गुणगान करता है और कहता है कि सीता मैं तुम्हारे सौंदर्य से देख के मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनना चाहता हूँ, ये राम तो एक भिखारी है, तुम इसे छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। तो जैसे ही सीता ये सुनती है तो वह खुद हो जाती है, वह कहता कितना ये नीच व्यक्ति है कि एक साधु के रूप में आके ऐसे नीच प्रवृत्ति की बात कर रहा है। और सीता जैसे ही वो सीता का चेहरा रावण देख ही रहा होता है, और सीता जब समझ जाती है कि ये एक राक्षस है तो तुरंत वो लक्ष्मण रेखा के अंदर जाने का प्रयास करती है, पर रावण जब देखता है कि मेरे सारे बातों से प्रभावित नहीं हो रही है, तुरंत वो सीता को पकड़ लेता है और खींचने लगता है, और जब वो खींचने लगता है तो अभी जो सारी भगवान की लीला ऐसे है कि जब पहले सीता जब बालिका होती है तो तभी प्रभु श्री दशरथ महाराज के घर में एक बड़ा धनुष होता है, उसको शिवजी का धनुष कहते हैं, और वो जो धनुष जो होता है वह जब उसको हिलाना होता है तो सैकड़ों सैनिक लगते हैं उस धनुष को, जिस बड़े विशाल डब्बे में रखा होता है उसको हिलाने के लिए। तो एक दिन सीता खेल रही होती है और उस समय वो खेलते खेलते कुछ चीज होती है, वो उसको एक पेड़ पे एक फूल होता है, फूल निकालना होता है उसको, तो कुछ वस्तु नहीं है निकालने के लिए, तो वो इस धनुष को उठा लेती है और धनुष को उठा के वो उस फूल को तोड़ देती है। तो फिर श्री राम जो दशरथ महाराज ये सुनते हैं कि ये सीता ने इतने शक्तिशाली धनुष को उठा लिया है, तो वो सोचते हैं कि जो सीता का पति है वो कम से कम सीता के इतने शक्तिशाली तो होना चाहिए। तो फिर जब वो इससे सोचते हैं तो तभी वो धनुष को अपनी शक्ति के रूप में धनुष को परीक्षा के लिए रखती है। और वास्तव में जब ये शक्ति परीक्षा होती है तो रावण भी वहां पे आता है और रावण वो धनुष को उठा नहीं पाता है। तो जो धनुष को सीता ने उठाया है पर रावण उठा नहीं पाया है, तो इसका मतलब है सीता जो है रावण से अधिक शक्तिशाली है। तो फिर यहाँ पे जब रावण सीता का अपहरण कर रहा है तो सीता फिर उस समय रावण का प्रतिकार क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि ये भगवान की लीला है। तो वास्तव में भगवान की लीला में जो है उसका विश्लेषण हम जहां तक आचार्य ने किया है, जहां तक हम कुछ नैतिक सीख सकते हैं वहां तक कर सकते हैं, पर यहाँ पे भगवान ये लीला के द्वारा हमें श्रवण करने की कथा दे रहे हैं और उसके साथ साथ वे हमें कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो इसीलिए वहां पे जो रामायण में उस समय प्रसंग हो रहा है उस प्रसंग में सिखाया जा रहा है कि कैसे दर्शाया जा रहा है कि ये सारे जो व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो सीता भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो सीता की जो अद्भुतता है वो दर्शाने के लिए बताया गया कैसे उसमें धनुष उठाने की भी शक्ति थी। तो लीला में अलग अलग समय अलग अलग चीजें दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार से घटनाएं होती है, पर यहां पे जो दर्शाया जा रहा है कि कैसे जब कोई व्यक्ति जब हम भगवान से दूर कैसे चला जाता है ये दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो कैसे जाता है, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे सीता का जो अपहरण होता है वो चार चीजों के द्वारा होता है। सबसे पहले भगवान के साथ है वो, पर भगवान के अलावा किसी और चीज की ओर आकर्षित हो जाती है, यह पहला चीज है। और फिर उसके कारण वो भगवान को अपने से दूर भेज देती है। और फिर उसके बाद में जो लक्ष्मण है वह गुरु के रूप में प्रतिनिधि है, गुरु के प्रतिनिधि है वो, प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो फिर वो न केवल भगवान को दूर भेज देती है, उसके बाद में गुरु को भी दूर भेज देती है, और बाद में गुरु को भी न केवल दूर भेज देती है, तो गुरु हमेशा ही हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, पर फिर भी गुरु के आदेश है वह भी हमारा संरक्षण करते हैं। तो गुरु का आदेश क्या होता है यहाँ पे सीता के लिए, कि वो लक्ष्मण रेखा के बाहर न जाए। तो उसी तरह से जो हम जो गुरु का आदेश है, गुरु भले ही नहीं है गुरु का आदेश है उससे भी संरक्षण हो सकता है, पर जब गुरु के आदेश का भी उल्लंघन हो जाता है तो फिर जो है हम मोह में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से सबसे सर्वोत्कृष्ट संरक्षण क्या है कि हम इस भौतिक चीजों से आकर्षित न हो और जो भगवान देते हैं उसमें ही संतुष्ट रहे। पर भले ही हमें भौतिक चीजों से आकर्षण होता है तो कम से कम वो भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए हम भगवान को, गुरु को, गुरु के आदेश को कभी ठुकराए नहीं, कभी उनको दूर नहीं भेजें। तो अगर वैसे अगर वो कर देते हैं हम तो फिर हमारा संरक्षण बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम माया के जंगल में फंस जाते हैं। और फिर जो रावण होता है तुरंत सीता को पकड़ लेता है और उसको खींच के अपने रथ की ओर ले जाता है और सीता जोर से चीखती है राम राम लक्ष्मण, पर अभी तक राम और लक्ष्मण वहां से काफी दूर है और क्योंकि मानवीय लीला है सीता का आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचता नहीं है, और वो अपने अपने जो रथ में सीता को बैठा लेता है और खींच के उसको अपहरित करके ले जाने लगता है। जो आगे लीला है हम उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। किसी कोई सवाल है? यस तो जब सीता को रावण ने पहले ही देखा था स्वयंवर में, बाद में जब शूर्पणखा ने बताया तो क्या उससे वह पीड़ित नहीं हुआ? तो वास्तव में जो काम वासना है वह अलग अलग प्रसंग में अलग अलग परिस्थिति से व्यक्ति को प्रलोभित करती है। तो जो क्षत्रिय होते हैं तो राक्षस, रावण राक्षस है, वहां पे वो एक स्वयंवर में गया होता है और स्वयंवर में स्वयंवर के नियम होते हैं। तो राक्षस भी भले क्यों ना हो, वह वहां पे स्वयंवर का नियम तोड़ के सीता को वहां पे अपहरण नहीं करता है। तो जब स्वयंवर में यशस्वी नहीं होता है तो वहां से चले जाता है, क्योंकि क्षत्रियों के भी नियम होते हैं और वो सोचता है वहां पे कि यह जो उस समय उसको वो शाप मिल चुका है कि वो जबरदस्ती किसी स्त्री को नहीं ले जा सकता उसकी इच्छा के अनुसार, इसकी इच्छा के विपरीत, इसीलिए वो वहां पे छोड़ता है उसको। पर जब विशेष करके किसी व्यक्ति को काम वासना के लिए उकसाया जाता है तो फिर वो जो बुद्धि होती है वह भ्रष्ट हो जाती है। राधा गोकुलानंद भगवान की जय। तो मैंने भगवत दर्शन में एक लेख लिखा था कि कैसे जो आधुनिक मीडिया है, टीवी है, मूवीज है, यह सब जो है यह एक आधुनिक शूर्पणखा के समान है। वह क्या करते हैं, जो भौतिक काम वासना उसको उकसाने के लिए ऐसे प्रकार से चित्र होते हैं, ऐसे प्रकार से फोटोज होते हैं, उससे क्या लोग काम वासना उससे उत्तेजित करते हैं। तो रावण को सीता के सौंदर्य के बारे में पहले तो आया था, पर वहां पे एक स्वयंवर का प्रसंग था, पर यहाँ पे जब शूर्पणखा ने उसको जान बूझ के उकसाया तो तभी उसका जो बुद्धि थी वो उससे पूरी विनष्ट हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।